ओम शांति। अभी एक के बाद एक बहुत अच्छा भोजन आत्मा को मिल रहा है, ऐसा अनुभव करते होंगे। यहाँ बाबा के बेहद घर में एक से एक बढ़कर, जैसे अच्छा वैरायटी भोजन बनाने वाले होते हैं तो सब उनको बुलाते हैं, पसंद करते, वैसे यहाँ भी एक एक बाबा के अमूल्य रत्न है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता और अपने अपने बुद्धि के हिसाब से बाबा के ज्ञान को जो समझा, अनुभव किया, वो सबके सामने रखने की भी बहुत अच्छी एक कला होती है। तो आज हमारे बीच राजू भाई पहुंचे हैं, ऐसे तो सब जानते होंगे, और आपको राजू भाई मुरली वाले इस हिसाब से भी सब बुलाते हैं, पहचान है आपकी, क्योंकि आपको ज्ञान तो बचपन से मिला, 1960 से ज्ञान मिला, 71 में पहली बार यहाँ पांडव भवन पहुंचे, और तभी से ही आपने निश्चित कर लिया कि हमें इसी सेवा में अभी लग जाना है। तो 72 से आप इसी बाबा के बेहद घर में ईश्वरीय सेवाएं देते रहे हैं। शुरू में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने सेवाएं दी, मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार की, लेकिन विशेष 76 से आपको बाबा ने एक विशेष महत्व की सेवा दी, जैसे मुरली टाइप करने की। और ये सेवा बहुत ही दूर दूर तक, हर आत्मा तक पहुंचती है, ऐसे कहेंगे बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे मुरली पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं। तो ऐसी विशेष मुरली टाइप करके, और उसमें भी आजकल काफी सालों से हम देखते हैं कि जो पहले नहीं था, लेकिन आपने मुरली का सार क्या है, प्रश्न उत्तर तैयार करके भेजते, धारणा की पॉइंट अंत में वो भी दो भेजते, वरदान और स्लोगन, ये सब आपकी कमाल है, आपकी बुद्धि की कमाल है, ऐसे कहेंगे, जो हाईलाइट करके भेजते, तो सारी मुरली शायद भूल जाए, याद ना आए, लेकिन ये मुख्य बातें विशेष अंडरलाइन कराते हैं। दूसरा पत्र पुष्प भी आपकी ओर से ही तैयार किया जाता है, जिसमें दादी जी का भी पत्र प्रेरणाएं होती है, फिर अव्यक्त इशारे होते हैं, दादियों के क्लासेस होते हैं, सब किसके लिए भेजते, सब ब्राह्मणों के लिए, कि सबकी उन्नति हो, सबको लाभ मिले। कईयों ने दादियों को नहीं सुना, क्या सुनाया था, क्या क्लासेस कराई थी, आपके पास बड़ा स्टॉक है। और तीसरा आपकी विशेष ये भी सेवा है कि जो पोस्ट आती है सेंटरों से, कुछ ना कुछ कारोबार या विशेष कार्यों के लिए, तो पोस्ट का भी जवाब आप देते, और जिस कारण दादियों के बहुत समीप आप आ गए, ऐसे तो थे, लेकिन ये बातों के लिए लेन देन करनी होती, पूछताछ करनी होती, दादी से कुछ डायरेक्शन जो दे वो सुन करके फिर भेजना है, तो बड़ी दादियों से भी, निमित्त दादियों से भी आप बहुत ही नजदीक रहे। बाकी तो हमारी जो विंग्स से अलग अलग ग्राम विकास प्रभाग है, उसके आप वाइस चेयरपर्सन हो, जिस कारण भारत के कई स्थानों पर, और न सिर्फ भारत, विदेशों में भी आपने सेवार्थ भ्रमण किया है, और आपके लिए बहुत कुछ सेवाएं करते रहे, विशेषताओं से संपन्न होते हुए बाबा का कार्य कर रहे हो, और नीचे ऊपर भी जो हमारे बठिया क्लासेस विंग्स के प्रोग्राम सब चलते हैं, उसमें भी आप सभी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। तो आपके लिए यही कहूंगी कि आपकी शक्ति है महान, जो आपने सदा जलाई कार्यों की मशाल, तो कार्यों की मशाल जलाते हुए आपने अंधियारे को आज तक बहुत अच्छी तरह से खत्म करते आए और खत्म कर रहे हैं। ऐसी विशेष मशाल लेकर के जगह जगह पर जाकर के बाबा का कार्य करते हो, तो ऐसी विशेष आत्मा आज हमारे बीच पहुंचे हैं, आप भी नीचे भी कार्यरत होते हैं, जब आवश्यकता है ऊपर भी आपका डिपार्टमेंट यहाँ बाजू में ही है, फोटोस्टेट कॉपी और ये सारा ही कारोबार, स्टेशनरी आदि का भी आप ऊपर नीचे सब जगह संभालते हो। तो आज इस भट्टी में हम सभी राजयोगी राजू भाई को बहुत ही दिल से एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का आपका विषय है, सबको याद है, डबल ताज तिलक तख्त। और इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से आप अपने अनुभव युक्त बोल सबके सामने रखें। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम सभी बहुत प्यारा एक गीत सुन रहे थे, उसकी एक लाइन कि ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने जागीर दी है, कौन सी, ताज तख्त और तिलक। मिली है जागीर, वर्षा मिला है बाबा से, ये सतयुग में तो मिलेगा ही, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों को डबल ताज भी है, डबल तख्त भी है और डबल तिलक भी है। वैसे भी भक्ति मार्ग के अंदर तिलक लगाने की बहुत अच्छी आदत होती है, सवेरे सवेरे स्नान करके तिलक लगा लेते हैं, मंदिरों में जाएंगे तो तिलक लगाते हैं। यहाँ स्थूल में भी जब भट्टी करने आप आते हैं तो शायद तिलक लगाया गया हो, लगाया था। वैसे तो ये यादगार ही है, लेकिन हम सबको बाबा ने अविनाशी तिलक लगा दिया, और वो स्मृति का, आत्मिक स्मृति का तिलक पहला ही है जिस पर अभी आप शायद क्लास कर चुके हैं। बाबा ने हम सबको पहला पाठ पढ़ाया, पहले दिन स्मृति दिलाई, आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। और इस आत्मिक स्मृति का तिलक जब लगा तो आत्मा स्वराज्य अधिकारी राजा बन गई, मालिक बन गई। जिन कर्मेंद्रियों के वो अधीन थी, परवश स्थिति थी, ये स्मृति आते ही, स्वराज्य आसन पर बैठते ही, तिलक लगाते ही, एक एक कर्मेंद्री उसका कहना मानने लगी, परवश स्थिति समाप्त हो गई। कभी भी अगर ये अभ्यास किया है तो ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि क्या करूं, आंखें धोखा देती, मुख धोखा देता। कल बाबा कह रहे थे कि आंखें तो क्रिमिनल हैं ही, लेकिन मुख भी क्रिमिनल हो गया है। लोभ में भी खाने पीने की कोई चीजें आती हैं तो भी वो क्रिमिनल हो जाता, चलायमान हो जाता, और क्रोध तो क्रिमिनल है ही। तो बाबा ने हम सबको आत्मा का इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है, अमृत वेले से आंख खुलते ही सवेरे सवेरे भ्रकुटी आसन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ अभ्यास करते हैं तो इस शरीर से अलग अनुभव होने लगता है। और वास्तव में यथार्थ योग यही है, देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होने लगे, ये अलग है, मैं अलग हूँ। बहुत काल से इस शरीर के भान में रहने के कारण मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसकी विस्मृति हो गई। और ये स्मृति बाबा ने दिलाई कि आप एक लाइट हो, ज्योतिर्बिंदु हो, इस शरीर में भ्रकुटी आसन पर विराजमान हो। तो ये आत्मिक स्वरूप का तिलक लगा और इस कर्मेंद्रियों पर हमारा शासन हो गया। कोई भी कर्म इंद्री चलायमान नहीं हो सकती अगर आत्मा अपने इस तिलक को ध्यान पर रखती, स्मृति में रखती है। तो डबल तिलक में एक है आत्मिक स्वरूप का तिलक और दूसरा है विजय का तिलक। जैसे कभी भी योद्धे युद्ध के मैदान पर जाते हैं तो उनके जो संरक्षक होते हैं, मात पिता होते हैं, गुरु होते हैं, उनके मस्तक पर विजय का तिलक लगा देते हैं कि विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सबने लगाया है, बाबा ने आपको लगा दिया है, विजयी है ना सभी। विजय का तिलक बाबा ने अमृत वेले क्या जब से जन्म हुआ तब से ही लगा दिया। हो ही नहीं सकती हार किसी आत्मा की अगर ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय का तिलक है, निश्चय के आधार से विजय निश्चित है। तो हम सबको ये डबल तिलक रोज स्मृति में लाना है। कभी भी आत्मविश्वास कम न हो। कई बार ऐसे होता है कोई कोई के संस्कार प्रबल होते हैं और बार बार जब डिस्टर्ब करते हैं, योग लगने नहीं देते, विघ्न डालते हैं तो आत्मा निराश हो जाती है, पता नहीं कभी माया से हार न हो जाए। कमजोर संकल्प भी कई आत्माएं खुद ही क्रिएट कर लेती हैं जब देखती हैं कि ये तो बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत युद्ध है, बहुत मेहनत है, तो निराश हो जाती है, सोचती हैं भाई हमें तो लगता है बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा तो कहता है ये सहज मार्ग है, लेकिन ये सहज मार्ग नहीं है, तो बहुत मेहनत वाला है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति नहीं बनती, वो दैहिक दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन नहीं होती। कारण केवल एक ही है कि वो अपने आप को बार बार स्मृति का तिलक नहीं देता कि मैं विजयी हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा की नजर पड़ी, बाबा ने ऐसे ही आप सबको, हम सबको सेलेक्ट नहीं किया, उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया है जिन्होंने विजय प्राप्त की है। कल्प कल्प के जो विजयी हैं उनको ही बाबा ने चुना है, और चुन करके बाबा की नजर में हम सब हैं। बाबा हमारे वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते। हो सकता है कई ऐसे हिसाब किताब होते हैं जिसके कारण मन स्थिर नहीं होता, बहुत बातें मन के अंदर चलती हैं, और कुछ ऐसे विकारी पतित पुराने अनेक जन्मों के संस्कार हैं जिन संस्कारों के आधार से संकल्प बहुत तीव्र गति से उल्टे संकल्प चलते रहते हैं, कंट्रोल से बाहर रहते हैं। लेकिन बाबा जानता है ये बच्चे ने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है और यही विजयी बनेगा, दूसरा कोई नहीं है, उसका हम बच्चों पर बहुत विश्वास है, और हमें भी इस विश्वास को कायम रखना है कि जब मुझे बाबा ने चुन करके अपना बनाया है, इतनी अच्छी पालना ऊंची पढ़ाई मिल रही है, तो विजयी होना ही है, विजय हमारा अधिकार है। इसलिए कभी भी कोई ऐसे कमजोर संकल्प आते भी हों, स्वप्न भी आते हों, कभी युद्ध भी चलती हो, तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि कई बार दो बीमारियां जो है ना बहुत फास्ट गति से जैसे आजकल फैल रही हैं कलयुग के अंदर, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं में भी फैल जाती है। एक है हार्ट की बीमारी जो आप सब जानते हैं, जरा भी कुछ चेंज होता है ब्लड में, परिवर्तन आता है तो कहते हैं इसकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, हार्ट अटैक आ जाते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई प्रदूषण के कारण कोई कारण से गांठ बन गई तो कहते हैं गांठ कैंसर की निशानी है। तो ये दो बीमारियां जैसे दुनिया के अंदर फास्ट हैं, फैल रही हैं, ऐसे इस ब्राह्मण आत्माओं में भी, इस संगठन में भी कभी कभी निराश हो जाना, उदास हो जाना, उमंग उत्साह खत्म हो जाना, खुशी गायब हो जाना, जैसे ब्लॉकेज हो गई, हार्ट की नसों में खून दौड़ना बंद हो गया। इसलिए ध्यान देना कि हम सब के अंदर उमंग उत्साह कभी कम न हो, अगर कोई बात आती भी है तो सोच सोच करके उसको बड़ा नहीं बनाना। कई लोग सोच करके बड़ा बना देते हैं, बाबा बड़ा अच्छा एक शब्द देते हैं कि एक तिल को ताड़ बना देते हैं, है, तिल जितनी बात, छोटी सी बात और बहुत बड़ी पहाड़ के रूप में आ जाती। इसलिए कोई भी बातें अगर आती भी हैं संस्कारों की, पिछले कर्मों की, तो उसको बिंदी लगाने का अभ्यास करो, फुल स्टॉप, सोचना नहीं है। और किसी के आगे वर्णन नहीं करो। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे मुझे हो गया, अब मैं क्या करूं, इसको सुनाया, उसको सुनाया, और वो बात उनकी नजरों में आ गई, और कई बार लोगों की नजरें भी हमें गिरा देती है नीचे। जब उस दृष्टि से वो हमें देखने लगते हैं कि इसके अंदर ऐसे संकल्प चलते हैं, ऐसे विकल्प चलते हैं। इसलिए हरेक के आगे कोई बात कमजोरी की भी सुनाना नहीं। सुनाना तो एक बाबा ही समाने वाला है। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को लिख के दे दो, समाज को खत्म कर दो। अधिक सोच सोच करके उसको बड़ा नहीं बनाना, और वर्णन करके कहीं उस बात को फैलाना नहीं। अगर कोई है ऐसी कमी कमजोरी, तो आज की इस भट्टी में आप सब आए हैं। भट्टी की शुरुआत हम सब पहले पहले करते थे मधुबन में, तो दादी जी कहती थी कि ऐसी कोई भी कमी कमजोरी हो जिसे आप समझते हैं ये हमारे मार्ग के अंदर उन्नति में रुकावट है, बाधा है, वो लिख डालो कागज के ऊपर, उतार दो। और बाबा के कमरे में बाक्स रखा है, एक चिटकिया उसमें डाल गया। कोई पढ़ता नहीं वो चिटकिया, कोई भी देखता नहीं है, बाबा जाने बच्चे जाने। तो बाबा के कमरे में लिख करके चुपचाप बाबा को बोलो, बाबा ये कमी ये कमजोरी आप मेरी से ले लो, समाप्त हो जाएगी। और प्रतिज्ञा के रूप में अगर संकल्प दृढ़ता का करेंगे तो परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए आत्मिक स्वरूप का तिलक और विजय का तिलक सदा लगा रहे। कभी भी कोई बातें आए भी जाएं, तो उनको सोच सोच करके चिंतन में ला करके निराश उदास हताश नहीं होना, पहली बात है। दूसरा, बाबा ने हम सबको ताज पहनाया है, डबल ताज धारी हैं हम संगम युग पर। सत्युग में ताज तो रतन जड़ित होगा, प्योरिटी का भी होगा। हमेशा देवी देवताओं की या धर्म पिताओं की जब मूर्ति बनाते हैं, चित्रकार जब चित्र बनाते हैं, तो एक लाइट का ताज जरूर दिखाते हैं, और साथ साथ देवताएं या राजाई की निशानी ताज रही है। डबल ताज हीरे जड़त जड़ित सत्युग के देवताओं का जो पवित्रता के साथ था, फिर ताज बदलते गए। कई ताज के साक्षात्कार बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कराए थे। सुना है कहानी में, सुना होगा, जब ब्रह्मा बाबा शुरू शुरू में ट्रांस में जाते थे, बीच बीच में कलयुग के सतयुग के साक्षात्कार शुरू हुए, तो ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे ताज वालों के चित्रों के, पगड़ी वालों के, ताज वालों के दर्शन साक्षात्कार हुए। और बाबा ने जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया, और उससे आवाज आई कि बच्चे अहम विष्णु तत्त्वम्, ये ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ कि ये ताज जो विष्णु के सिर पर है वो मुझे प्राप्त होने वाला है, वो नशा चढ़ गया। तो बाबा के बच्चों को भविष्य में तो डबल ताज मिलेगा ही, लेकिन संगम युग पर भी डबल ताज बाबा पहनाते हैं। पहना है सभी ने, है डबल ताज। अगर हमारे संकल्प बहुत प्योर शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, सकारात्मक चिंतन है, तो एक सबके चारों ओर एक बहुत सुंदर ओरा रहता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं, वो लाइट का है। आजकल कई ऐसे कैमरे निकले हैं जो हमारे इस लाइट के आभा मंडल को, इस ओरा को कैच करते हैं। साइंस वालों ने ऐसे कैमरे बनाए हैं। प्रैक्टिकल अभी कुछ दिन पहले जब हमारी एक रिसर्च चल रही है पंतनगर यूनिवर्सिटी में, एक बच्ची पीएचडी कर रही है योगिक खेती पर, योगिक खेती पर, वो ज्ञान में नहीं, योग नहीं आता है उसको, लेकिन स्कूल के बच्चे हैं, उनको शौक है, और कराने वाली प्रोफेसर जो है वो हमारी बाबा की बच्ची है, उसको निश्चय है। तो उसको सिखा सिखा करके, योग करा के उसने रिजल्ट दिया। पहले एमएससी कर लिया, उसने पास हो गई, अभी पीएचडी कर रही है। तो पीएचडी में जब रिजल्ट उसने दिखाई प्रैक्टिकल, कि जिस पर योग किया, जिस पर अच्छे वाइब्रेशन दिए, और जो बीज को यहां से यज्ञ से चार्ज करके भेजा गया, उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी है, उसको सारे बीज बहुत शक्तिशाली निकले। तो वैज्ञानिक इस बात को मानते नहीं, वो कहते क्या प्रूफ है कि आपके विचारों का ये प्रभाव है, हो सकता है वहां का वायुमंडल ऐसा हो, वहां हवा पानी वहां की जलवायु ऐसी हो इसलिए ऐसा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि हमारे विचारों का प्रभाव है, योग का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा अच्छा जिसने इस पर योग किया है उसका ओरा लेकर के आओ। वहां से वो बहन को बच्ची को भेजा और बच्ची ने ऐसे एक वैज्ञानिक को साथ लिया जो यहाँ कैमरा लेके आई कि यहाँ पर जिस स्थान पर वो बीज रखा गया चार्ज किया गया और जिन्होंने योग किया उनके ओरा को ले आभा मंडल चेक करो। आप सब समझते हो कि हम सब जितना समय शुद्ध और पवित्र विचारों में रमण करते हैं लाइट का बहुत सुंदर क्राउन बनता है। अनुभव भी होता है कईयों को कि बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट हैं, बहुत प्योर आत्मा है, इनसे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। जैसे दादियों के सामने जब जाते हैं तो दादियों के विचार इतने शुद्ध और पवित्र हैं, जाते ही उनकी खिंचाव, उनका जो आकर्षण है चेहरे का नहीं है लेकिन उनकी जो प्योरिटी का है, उनकी जो शुभ भावनाओं का है, वो उगरा खींचता है, आकर्षण करता है। तो ये एक ताज के रूप में हम सबके मस्तक पर सदा बना रहे, ध्यान देना ये लाइट का ताज है और हर एक ब्राह्मण के ऊपर रहना चाहिए, कहीं टूटा फूटा न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो, उसका ध्यान देना। और उसके लिए केवल यही ध्यान देना है कि संकल्प बड़े प्योर शुद्ध हों, किसी के प्रति भी नफरत के, नेगेटिव इधर के उधर के, बदला लेने के, कई प्रकार के जो संकल्पों में आत्माएं रमण करती हैं, वो जिस प्रकार की हमारी भावनाएं विचारधाराएं होती हैं वैसा ही हमारा ये क्राउन तैयार हो रहा है। इसको बाबा एक शब्द में कहते हैं ये प्योरिटी का क्राउन है, प्योरिटी का। जितने पवित्र विचार, पवित्र विचार केवल एक ब्रह्मचर्य की पालना नहीं है, पवित्रता के अंदर पूरे ही लक्षण सब निर्विकारी स्टेज के आते हैं। जितनी आत्मा निर्विकारी स्टेज में रहती है, निर्दोष स्थिति में रहती है, कोई भी प्रकार का छल कपट ईर्ष्या द्वेष मान अपमान की फीलिंग्स अगर नहीं है और आत्मा बिल्कुल हल्की है, लाइट है, प्योर है, तो ये हमारा क्राउन जो है, ताज है, वो बहुत सुंदर चमकता हुआ लोगों को अनुभव होता है। भले इन स्थूल नेत्रों से इसको हम नहीं देख सकते हैं लेकिन आज सूक्ष्म कैमरे ऐसे तैयार हैं जो हमारे इस ओरे को, उस आभा मंडल को, उस ताज को लोग कैच कर रहे हैं। अभी लेके गई यहाँ से वो बहन, क्या रिजल्ट है वो वहां से हमको पता चलेगी, लेकिन आई थी कैमरा लेकर के। दूसरा ताज सेवाओं की जवाबदारी का है, जुम्मेवारी का है, क्योंकि ऐसे ही रतन जड़ित ताज सत्युग में नहीं मिलेगा अगर संगम पर किसी ने जवाबदारियां नहीं ली हैं। तो कुछ न कुछ हरेक आत्मा को ऐसी सेवा का जवाबदारी लेनी चाहिए, ये सेवा यज्ञ की मुझे करनी ही है। भले लौकिक जवाबदारियां हरेक की अपनी अपनी होती हैं लेकिन बाबा के यज्ञ को आप सभी को ये ध्यान पर है ही रहता ही है कि बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा गुप्त रीति से कर रहे हैं और इस गुप्त रीति में जो परमात्मा का कार्य चल रहा है उसमें हमारा योगदान क्या। इतनी बड़ी स्थापना का कार्य है, आप समझ सकते हो कि इतने बड़े विश्व को परिवर्तन करना। कभी कभी मुरली जब चलती है बाबा की, आप सबका ध्यान जाता होगा, सुनते सुनते ऐसे लगता है कि बाबा कहां पर हमको ले जाना चाहता है। कल की मुरली में, कल या परसों की मुरली में सुन रहा था, बाबा ने कहा बच्चे कभी विचार किया है इतनी बड़ी दुनिया का विनाश होगा, ये सब खत्म हो जाएगा जो देख रहे हो, तीन हिस्सा पानी में चला जाएगा, जल प्रलय हो जाएगी, इतना बड़ा भयानक विनाश होगा और उसके बाद स्थापना होगी सतयुग की, और उस स्थापना के लिए हम सब बच्चे बाबा के जवाबदार हैं। संगम युग पर किस किस तरह से हम बाबा की इस कार्य में मदद कर रहे हैं, एक है स्थूल रूप में भी मददगार बनना और दूसरा अगर हम यज्ञ रक्षक बन करके रहते हैं, जवाबदारी ले लेते हैं कि हमें बाबा के यज्ञ को बढ़ाना है, भरना है, भरपूर रखना है, कोई भी विघ्न इस यज्ञ में कहीं से भी ना आए, वो भी तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो ये निमित्त बनने का जो ताज है उससे बहुत दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का ताज, केवल ऐसा नहीं हमारी निमित्त टीचर्स हैं यही निमित्त हैं, लेकिन आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले भी ये समझ के चलो कि बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, इस सत्य ज्ञान और ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सबको बाबा ने निमित्त बनाया है, हम जवाबदार हैं। इसलिए जब ये भान रहता है, जैसे लौकिक में माता पिता बच्चों के लिए संरक्षक जवाबदार होते हैं, तो सदा ध्यान रहता है कोई ऐसी एक्टिविटी न हो जो बच्चे उसको कॉपी कर लें, नोट कर लें, हमेशा उनके सामने बहुत अलर्ट रहते हैं, कभी भी ऐसी वैसी एक्शन नहीं करते, ताकि वो सीखेंगे क्या, सीखेंगे तो माता पिता से। तो जब जवाबदारी होती है माता पिता की तो बहुत ध्यान रहता है। हम सब बच्चों को बाबा कहते हैं तुम एक एक जवाबदार बच्चे हो। ये जवाबदारी का ताज जो है ये भारी नहीं है, बहुत हल्का है, लेकिन स्मृति में रखना कि हम सब विश्व परिवर्तन के महान कार्य में निमित्त आत्माएं जवाबदार हैं। तो ये ताज अगर पहना हुआ है, बहुत शक्ति चाहिए इसके लिए, इस ताज को धारण करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ के अंदर एक कोने में अगर कोई गलत काम कर लेता है, मनमत से चलता है, परमत से चलता है, कुछ भी उल्टा करता है, तो आपको लोग नहीं देख रहे हैं लेकिन पूरे यज्ञ के ऊपर ध्यान जाता है, ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, फट से ध्यान जाता है, उस संस्था में जाता है और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये भी एक जवाबदारी हो जाती है कि हम बाबा के इस बेहद यज्ञ में किसी भी स्थान पर हैं। बाबा कई बार एक शब्द उच्चारण करते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं समझना, मैं तो किसी एक कोने में रहता हूँ, मैं तो अकेले एक सेवा केंद्र पर हूँ, एक कमरे में हूँ, एक मकान में हूँ, लेकिन आपके ऊपर बाबा का भी कैमरा लगा हुआ है और लोगों का भी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए इतनी जवाबदारी है कि हमें सब कुछ सब कोई देख रहा है। इसलिए जो संकल्प कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ, बहुत अटेंशन से करना है। अभी हम सब बीके ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर इस समय सबकी नजरें हैं, क्योंकि संस्थाएं फेल हो रही हैं, गुरु लोग फेल हो रहे हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं हर एक धर्म के ऊपर, जो धर्म प्रचारक है उनके ऊपर उंगली आ रही है कि ऐसा भी ये लोग भी ऐसे करते हैं, इस धर्म का संदेश देने वाले, उपदेश देने वाले, सबको सिखाने वाले, मार्गदर्शक ऐसा कर रहे हैं। तो उनको देख करके बची हुई एक संस्था है जिस पर भी कभी कभी कहीं कहीं छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, कोई मनमत से अलग अपना एक स्थान बना करके कोई गलती करता है और कहता है मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ, तो भी ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम होता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि जवाबदारी का बहुत बड़ा ताज है, किसी भी स्थान पर किसी भी कोने पर कोई है, अगर वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का बैज भी लगाया हुआ है, ड्रेस भी पहनी हुई है, चित्र भी लगाया हुआ है, तो भी लोग उसी नजर से देखते हैं कि इनका हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू में, ये उसी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई कोई मनमत से करते हैं तो एक धक से एक तरफ खूब सेवाएं होती हैं और दूसरी तरफ एकदम कलंक लगने लगता है। इसलिए जवाबदार आत्मा इस बात को ध्यान दें कि हम जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के जवाबदार हैं। ये जवाबदारी का ताज बहुत बड़ा है हल्का, केवल श्रीमत की बाउंड्री के अंदर रहना है। जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं, अगर हम उसके अंतर्गत उसके बाउंड्री के अंदर रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कभी भी कोई भी बात ये नहीं आएगा कि ये लोग भी ऐसे करते हैं। तो ये जवाबदारियां जो हैं उस पर थोड़ा सा विचार करना। सबसे बड़ी जवाबदारी तो है खुद को बदलने की। कई बार हम कहते हैं ये बदलेगा तो हम बदल जाएंगे, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, इसके कारण हमारे मार्ग में रुकावटें हैं। बाबा कहता है वो कुछ भी कर रहा है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। खुद को बदलने की जवाबदारी हम सब की खुद की है, और खुद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अपने को पढ़ाना होगा। हमने एक बात नोट की, जब शुरू शुरू में हम आए थे मधुबन में, इतनी मुरलियां चलती हैं, इतनी क्लासेज होती हैं, अभी तो दादियां नहीं हैं, लेकिन जब दादियां यहां पर मधुबन के अंदर थी पांडव भवन में, मधुबन वालों के मैं समझता हूं हफ्ते में 2 या 3 बार स्पेशल क्लास होते थे, हर डायरेक्शन मिलता था, कोई भी बात हो, कोई किसी की कंप्लेन हो तो पर्सनल बुला के सिखाने की बजाय क्लास होता था, डायरेक्शन मिलते थे, ऐसा क्यों हुआ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें सिखाई जाती थी। तो दीदी ने एक दिन हमें बुलाया, कहा देखो क्लास से लोग सुधरते नहीं है, मुरली से सुधरते नहीं है, बाबा डायरेक्ट आके बोलता तो भी सुधरते नहीं है, सुधरेंगे कैसे, कैसे सुधरेंगे, कोई अपने आप को अगर सुधारना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दीदी ने बड़ी अच्छी शिक्षा हम लोगों को दी थी कि अगर अपने आप को बदलना है तो खुद के खुद टीचर बन जाओ, खुद को पढ़ाओ कि मैं बाबा का बना क्यों, बाबा ने मुझे चुना क्यों, बाबा ने मुझे सेलेक्ट क्यों किया, किस लिए मुझे यहां पर बिठाया है, किस लिए यहां लाया है, यही सब करना था, दुनिया बहुत सारी पड़ी है ना। तो अपने आप का जो टीचर बनता है वो अपने आप को चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जवाबदारी है कि अगर मेरा कोई निजी संस्कार है, कोई स्वभाव है, कोई ऐसी आदतें हैं, कितनी भी क्लासेस सुन लो, अगर आपने दृढ़ता का संकल्प नहीं किया, मरेंगे मिटेंगे लेकिन इस संकल्प इस संस्कार को हम चेंज करके जाएंगे, अगर आप करेंगे नहीं तो कितनी भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिल जाए, हाँ बहुत अच्छी भट्टी हुई, बहुत अच्छी क्लास हुई, बहुत अच्छे हमें गाइडेंस मिले सब, लेकिन मैं बदल जाऊं ये संकल्प जब तक नहीं आया तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जवाबदारी का ताज तो यही है कि हम अपने आप को देखें, चेक करें जो अंदर है, हैं सबके अंदर कोई न कोई, जिसके कारण अभी तक संपन्नता संपूर्णता समीप नहीं आ रही है। भट्टी का नाम रखा कि भाई संपन्न और संपूर्ण बनना है, पहले भरपूर बनो फिर संपूर्ण बनोगे, संपूर्णता तो तब कहलाएगी जब संपन्नता आ जाएगी। तो हम सब संस्कार स्वभाव गुण अवगुण जो भी है उनको चेक करें और जो कमियां हैं उनको निकाल करके उसके स्थान पर पूर्ति करें, गुणों से भरपूर हो जाएं, संपन्न हो जाएं। जब संपन्न बन जाएंगे तो संपूर्णता आ जाएगी, कर्मातीत स्टेज बन जाएगी। इसलिए आवश्यक है वर्तमान समय हरेक को खुद को बदलने की, संगठन को शक्तिशाली बनाने की, यज्ञ को आगे बढ़ाने की, प्रकृति सहित पूरे तत्वों को परिवर्तन करने की, उनको भी सकास चाहिए। कई बार ये ध्यान नहीं जाता है कि बाबा ने ये सेवा भी हमें दी है कि प्रकृति के तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाने की जवाबदारी आप बच्चों की है। कहते हैं इसके लिए फुर्सत है, अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालते हैं तो प्रकृति के लिए क्या करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो समय पर प्रकृति साथ नहीं देगी, ये प्रकृति भी साथ नहीं देगी और बाह्य प्रकृति भी कहीं न कहीं जो नुकसान पहुंचाती है सेवा केंद्रों पर नुकसान, जबकि बाबा कहते हैं जहां मेरे बच्चे रहते हैं वहां प्रकृति के तत्व नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर हो रहा है तो उसका कारण है उस निमित्त आत्मा ने प्रकृति के तत्वों को योगदान नहीं दिया, सहयोग नहीं बनाया, कुछ समय तो उसको शांति का प्रेम का शक्ति का सकास बाबा की प्यार की किरणें दो कि हे प्रकृति तो अपना कार्य भले जल्दी पूरा कर लेकिन सत्व प्रधान स्थिति में आ जा। तो ये भी जवाबदारी हम सब की है, ध्यान रहता है कि समय नहीं मिलता है भाइयों को, सब लोग कम से कम 20 मिनट रोज प्रकृति के तत्वों को, पांचों तत्वों को। एक दृश्य सुनाता हूं मैं आपको, हमारी दादी जी को जब अव्यक्त हुई तो प्रकृति के पांचों तत्वों ने स्वागत किया, बाबा ने दृश्य दिखाया था ट्रांस में, गुलजार दादी जब भोग लगाने के लिए गई दादी के शरीर छोड़ने के बाद तो बाबा ने दृश्य इमर्ज किया कि प्रकृति के पांचों तत्व देवी देवता के रूप में सजे सजाए थाली लेके खड़े थे, और जब ये आत्मा पहुंची तो उन्होंने संबोधन किया, प्रकृति जीत आत्मा आई है, मैं उसका स्वागत करती हूं। बहुत दृश्य सुंदर था, वो सुना होगा शायद, ये तो अभी की बात है 2007 की। पांचों तत्वों की दादी खुद सेवा करती थी, एकांत में बैठ करके एकदम। कभी कभी जब हम लोग अचानक जाते थे ना, पूछते थे क्या करें दादी आप, से कभी कभी आंख ऐसे बंद कर लेते थे, बोलती नहीं थी। लेकिन उनको ये था कि ये सब प्रकृति के पांचों तत्व, आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी, यही पांच तत्व है। और यही पांच तत्वों का ही खेल चल रहा, अगर ये प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, आत्मा रह सकेंगी यहाँ? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन चीजें ही हैं। आत्मा जितनी सत्व प्रधान स्टेज को प्राप्त करेगी बाबा की याद से, परमात्मा की शक्ति से, उतना प्रकृति परिवर्तन होती जाएगी। और इस प्रकृति को सत्व प्रधान बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रकृति पति के साथ कनेक्शन जोड़ो और प्रकृति के तत्वों को सामने ले आओ। सकाश जा रही है, शांति की शक्ति जा रही है, पवित्रता की शक्ति जा रही है, ये बड़े स्वच्छ हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन देना, ये है प्रकृति की सेवा। तो हम व्यक्तियों को भी शांति की सकाश दें, मनसा सेवा करें, कुछ समय बैठ करके एकांत में जा करके। बहुत सारी आत्माएं कितनी डिस्टर्ब है, कितनी तनाव में है, कितने दुख बढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता है। ऐसे संसार में जाओ लगता नहीं इनके ऊपर कोई दुख है, लेकिन अगर कोई से थोड़ी सी बात कर दो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं इनके ऊपर दुखों के तो पहाड़ गिरे हुए हैं। इतनी दुख की दर्द की दुनिया है, बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में सहारे संरक्षक कौन? बाबा को पुकारते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहता है मैं खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, मैं तो अपने बच्चों से कराता हूं। तो कभी कभी फरिश्ता ड्रेस पहनो, एक स्थान पर बैठ करके इस शरीर से एकदम डिटैच हो जाओ और ऐसे लगे कि बाबा इस फरिश्ते को उन आत्माओं की मदद के लिए लिए जा रहा है, उड़ा के उनको सकाश दे रहा है, उनको साक्षात्कार करा रहा है, उनको शक्ति प्राप्त हो रही है। ये दृश्य इमर्ज करने चाहिए। तो ये जवाबदारियां अगर हम सब समझ लें तो ये ताज जिसने पहन लिया ना, उसको भविष्य ताज तो मिलना ही है, उसकी चिंता नहीं कर, अपने आप मिल जाएगा। तो एक तरफ प्योरिटी का ताज है, एक तरफ निमित्त जवाबदारियों का ताज। और जब जवाबदार होते हैं तो किन बातों से मुक्त हो जाते हैं बताओ? जवाबदार रहेंगे तो अलबेलापन अपने आप खत्म हो जाएगा, आलस्य खत्म हो जाएगा, अलबेला खत्म हो जाएगा, अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, बचपना खत्म हो जाएगा। जवाबदार व्यक्ति के ऊपर तो बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई बहुत जवाबदार हैं ये यज्ञ के। तो हम सब बाबा के बच्चे डबल ताजधारी बन करके रहें, डबल तिलक, डबल ताज, और फिर है डबल तख्त। डबल तख्त है ना, ये कितना अच्छा तख्त विनाशी आत्मा को मिला हुआ है, रहते हैं इस पर। वो तो लकड़ी का तख्त बना दिया अमृतसर में, और बाबा कहता ये अविनाशी आत्मा का अकाल तख्त है, ब्रकुटी आसन, कुटिया में बैठी है आत्मा एकदम। अभ्यास करना योग में भी, जैसे मैं आत्मा इस अकाल तख्त में भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई हूं, तपस्वी स्वरूप में अपने लाइट रूप में बैठ जाओ, अभ्यास करो इसका। इससे मालिक बन जाएंगे, जैसे तिलक लगाते हैं तो तिलक अलग प्रकार की विजय की स्मृति की ओर ध्यान खिंचवाता है, लेकिन ये भ्रकुटी की कुटिया तपस्या की ओर ध्यान खिंचवाती है। मैं अकाल तख्त में, अकाल तख्त पर, इस आसन पर विराजमान भ्रकुटी की गुफा में बैठी हुई तपस्वी आत्मा हूं। इसका जितना अभ्यास करेंगे ना, उतना देह और दुनिया के वातावरण से डिटैच हो जाएंगे। कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी, नहीं तो बहुत सारी चीजें कलयुग के अंदर, बाबा कई बार एक शब्द यूज करते हैं, माया का पंप है। जैसे सत्युग बाबा बना रहा है, सत्युग आएगा उसके पहले आर्टिफिशियल स्वर्ग उसने पहले ही बना दिया है। मार्केट के अंदर जाओ तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, मॉल में जाओ तो ऐसी वैरायटी है, तो लगता है पता नहीं सत्युग में होगी या नहीं होगी। आर्टिफिशियल कितना भरपूर कर दिया है, जब ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल कैसी कैसी निकल गई है। तो माया के राज्य में सब आर्टिफिशियल है। अब अकाल तख्त पर रहने वाली आत्मा इन सब आकर्षणों से मुक्त हो जाती है। न उसको देह आकर्षित करती है, न संबंध आकर्षित करते हैं, न कोई वैभव और पदार्थ आकर्षित करते। कई बार हमने अनुभव किया है जब हम इस स्मृति में जाते हैं, कई स्थानों पर जाना हुआ है। एक बार मैं गया एक जगह पर लंदन की तरफ मैनचेस्टर में, और वो मैनचेस्टर में बहुत बड़ा एक मॉल था। वहां की बहन को आया कि कुछ तो इसको मॉल दिखाऊं और कुछ मधुबन के लिए इसके लिए जो जरूरी हो ले ले। मुझे ले गई जबरदस्ती मॉल में घुमाने के लिए। बहन साथ में थी, हम दो ही जने थे। वो घुमा रही थी सारा, भाई साहब ये घड़ी है, ये मोबाइल है, ये है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये है, ये है, सारी चीजें घुमा दिया, मुझे दिखा दिया। कहे आपको अगर चाहिए तो बताना, इशारा करना सिर्फ। जब पूरा करके घुमा के ले आई, हमने कहा हमको बहन जी कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसे, आप कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ तो यादगार ही ले जाओ। हमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये क्या करेंगे, हम सब साधन ये सब भारत में मिलते हैं, हम यहां से क्यों उठा के ले जाएंगे, जरूरत होगी वहां मिल जाएंगे। बहुत परेशान, पूरा टाइम घुमाया, 3-4 घंटा मेरे को भी थका दिया। फिर बाद में कहते अच्छा कुछ नहीं तो जुराब तो ले जाओ। ऐसी आकर्षण की चीजें, इतनी वैरायटी निकली है कलयुग के अंदर, देख देख के लगता है सब क्या है। बाबा इसको कहता है माया का तिलसम, जादू है। अगर कोई अकाल तख्त पर रहता है तो ये सब तिलसम उसके लिए ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं है, सब विनाशी चीजें हैं। और विनाशी चीजों पर कोई आकर्षण न हो, न स्थान आकर्षित करे, न चीजें आकर्षित करें, न व्यक्ति आकर्षित करें, वो तभी हो सकता है जब अकाल तख्त नसीन आत्मा रहेगी। मैं अजर अमर अविनाशी इस तख्त पर विराजमान तपस्वी आत्मा हूं। तपस्या तभी की जा सकती है जब सब चीजों से वैराग्य हो, ऐसे तपस्या नहीं होती। तपस्वी आत्माएं सब आकर्षणों को छोड़ करके चली गई, जंगल में गई, हट किया, एकदम सबसे किनारा कर लिया, बैठ गई। तो बाबा कहता तपस्वी आत्माओं को संसार की कोई भी चीज वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। तो अकाल तख्त नसीन रहना माना तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर के रहना, ये तख्त है हम सबको बाबा ने दिया है। और दूसरा तो बाबा का दिल तख्त हम सबको मिला हुआ है। दिल तख्त है ना, हैं सब बाबा के दिल तख्त पर। फैजाबाद वाले तो सब बाबा के दिल तख्त पर है, हैं कि नहीं है? कौन कौन है समझते हैं? सब हैं, सब ने हाथ उठाया है, सबने हाथ उठा दिया। दिल तख्त बाबा का बहुत वैल्यूबल तख्त है, और सचमुच कहता है इतना बड़ा तख्त है जितने बच्चे चाहे इस पर बैठ सकते हैं, छोटा नहीं है, टूटने वाला भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, बेहद का है। लेकिन बैठता वही है जो बड़ा हल्का है, साफ है, स्वच्छ है, आज्ञाकारी है, सपूत है, वही तो दिल पर रहेगा। माता पिता के दिल पर वही बच्चा रहता है जो हाजी करना है, करने वाला है, बहुत प्यारा है, आज्ञा पर कभी भी अवज्ञाएं नहीं करता है। तो हम सबको दो बातें हैं, दादी हमेशा गुलजार दादी बड़े प्यार से एक शब्द कहती थी कि अभी दिलवाला बाप को अपने दिल में बिठा लो। सुना है दादी की क्लासेस, दिलवाला बाप को दिल में बिठा लो। लेकिन वो दिल में तब बैठेगा जब दिल बड़ा साफ होगा, जरा भी गंदगी अगर है। कोई भी बड़े VIP को अगर बुलाना हो, बिठाना हो, कहीं आसन देना हो, क्या करते हैं? हमको याद है, मधुबन की कहानी सुनाता हूँ, अभी तो आराम से बैठे ना, टाइम हो गया है, अभी मेरा दूसरा क्लास तो नहीं है ना आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मधुबन में VIP आया ज्ञानी जय सिंह, राष्ट्रपति था वो। जब VIP को आना था, उसने हाँ कर दिया मुझे मधुबन जाना है, भावना वाला था, सरदार जी थे। तो उसकी सिक्योरिटी आई चेक करने के लिए, चेकिंग आई पहले कि जाएगा कहाँ, कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ पर ये लोग खिलाएंगे, क्या करेंगे। तो हमारे पास मधुबन के अंदर ऐसा स्थान VIP के लिए नहीं था उस समय, जो उसके लायक बाथरूम हो, उसके लायक सोफा सेट हो। और सबसे पहले जब ओम शांति भवन बना था तो लिफ्ट नहीं थे, तो सीढ़ी चढ़ के वो सिक्योरिटी गई, कहती प्रेसिडेंट यहाँ किसी भी हालत में नहीं आएगा, प्रेसिडेंट के लिए आपको सीढ़ी नहीं चाहिए, लिफ्ट चाहिए। दादी ने क्या बड़ी बात है, लगा देंगे। तो वो लिफ्ट लगी, जो लगी ना ओम शांति भवन में लिफ्ट लगी। फिर जब यहाँ पांडव भवन में बिठाया, बोला गया यहाँ रहेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो दीदी जी ने शरीर छोड़ा था उसी समय 83 में, 84 85 में शायद आया हो। तो जब दीदी के कमरे को देखा तो कहता यहाँ तो सोफा ही नहीं है, सोफा डलवाए गए, फिर पूरा बाथरूम सारा चेंज किया गया, उसके लायक सब बनाया गया। तो कोई एक VIP के लिए इतना बड़ा परिवर्तन करना पड़ा, और हम बाबा को भगवान को बुलाना चाहते हैं मेरे दिल में आके बैठ जा, हम कुछ चेंज करते हैं नहीं। दिल कैसा है, अगर इसके अंदर जरा भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का वैर विरोध नफरत घृणा द्वेष कोई भी गंदगी होगी, तो कितना भी याद करते रहो बुलाते रहो आएगा ही नहीं। और ये दिल तक तो नहीं है, दिल तक तो यही है, भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं हैं। इस दिल तख्त पर बाबा आके बैठ जाए। एक मुरली बहुत अच्छी चली है बाबा की, जिसमें कहा है आप बच्चे भी मास्टर त्रिमूर्ति हो। साकार बाबा की मुरली में एक दिन आया कि बच्चे मैं डबल लाइट हूं, डबल लाइट एक शिव बाबा की एक मेरी, डबल बत्ती है, डबल बत्ती से कोई भी रोशनी दूर दूर तक जाती है। फिर जब अव्यक्त बाबा ने मुरली चलाई तो उसमें कह दिया कि बच्चे तुम तो मास्टर त्रिमूर्ति हो, अरे भ्रकुटी में आत्मा बैठी है, बाजू में बाप दादा को बिठा लो, त्रिमूर्ति बन जाओगे। ये भी योग करना, अभ्यास करना, हम कब तक परम धाम जाएंगे, आएंगे बुलाएंगे, जा पाएंगे या नहीं, कम से कम बाबा को बोलो बाबा तो आप तो बिल्कुल योर प्योर हो, कहीं भी जा सकते हो। कहता है ना मेरे को भी कोई भी बंधन नहीं रहा, ब्रह्मा बाबा कहता है जैसे शिव बाबा उड़ता है ऐसे मैं भी उड़ता हूं साथ में। अब जब कहीं भी जा सकता और सेकंड से भी फास्ट गति है, इतना तेज रॉकेट है, तो क्या मैं यहां बैठा हूं मेरे पास नहीं आ जाएगा। अभ्यास करो और हर एक ऐसे बैठो, अभी मैं 5 मिनट अभ्यास कराऊंगा करना, कि बाबा परम धाम से बाप दादा दोनों लाइट आई और यहां पर भ्रकुटी के साथ बैठ गया, मेरे दिल आसन पर विराजमान है। ये बहुत स्वच्छ और पवित्र आसन है। तो जब मैं अपने दिल तक पर बाबा को बिठाऊंगा तो बाबा भी कहेगा बच्चे को मैं अपने दिल तक पर बिठा लूं, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सच्चा है, बहुत सपूत है, कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करता है, हर बात कहना मानता है सुनता है। तो उस सपूत बच्चे को तो बाबा अपने दिल में ही रखेगा, जगह मिल जाएगी, जगह मिल जानी चाहिए बाबा के दिल में, और क्या चाहिए। तो हम सब बाबा के दिल को जीतने वाले दिल तख्त नसीन बच्चे बन करके रहें और बार बार अपने दिल तख्त पर बाबा को बिठाने का अभ्यास करें। योग और कुछ भी नहीं, मेहनत नहीं करना, लेकिन ऐसा स्नेह का संबंध रखो जो बाबा सेकंड में ऊपर से आपके बीच में आ जाए और ऐसे भ्रकुटी में अनुभव हो कि पवित्रता की शांति की आनंद की शक्तियां, वो सागर है। अब सागर कहीं आ जाए खुद ही डायरेक्ट, तो मुझे मैं आत्मा उसके समान बन जाऊंगी, उसके संग का रंग लग जाएगा, वो अनुभव होने लगेंगे। योग लगा या नहीं लगा, कई बार ये भी कहते हैं योग लगा या नहीं लगा, योग लगना क्या है। आज किसी अच्छी ऊंची पहाड़ी पर आप आए हो, आपको ठंडी हवाएं तो अपने आप लग रही हैं, कहना पड़ता है हवा लगी या नहीं लगी। सागर के किनारे जाएंगे वहां की लहरें आपको अपने आप अनुभव होने लगेंगी। अगर बाबा से मिलन हो गया, योग लगा अच्छी तरह से, तो शांति की प्रेम की आनंद की सुख की अच्छी अनुभूतियां होने लगेंगी, उन अनुभूतियों में आत्मा समा जाएगी। इसलिए ये लक्ष्य नहीं रखना कि मैं कोई जीत देखूं, मैं ज्योति बिंदु देख लूं, देखने से क्या मिलेगा। इसलिए बाबा मना करता है देखने की आस नहीं रखो, आप अपने स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाओ, वो गहरे अनुभव होने लगेंगे शांति के प्रेम के सुख के आनंद के, और उन लहरों में लहराते रहो, यही अच्छा योग है। तो अभी हम सब चलते हैं 5 मिनट के लिए, सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठना, अकाल तख्त नसीन होकर के, और दिलवाला बाप को कहो बाबा ये तख्त आपके लिए है, बड़ा साफ है स्वच्छ है, कोई के प्रति कोई भावनाएं नहीं है, मैं एकदम प्योर शुद्ध आत्मा हूं, आप परम पवित्र बाबा मेरे साथ आकर के बैठ जाओ। बाप दादा दोनों आते हैं, अकेले नहीं आता है, उनकी जोड़ी बड़ी पक्की है, इसलिए दोनों को साथ बुलाओ और अनुभव करो कि मैं आत्मा उन दोनों के बीच में बैठी हुई उनकी शक्तियों का अनुभव कर रही हूं।
की कुटी